लर्नर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे इससे आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होता क्या है? जब हम किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट पे रख रहे हैं तो उस चार्ज के अराउंड चारों तरफ फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जहाँ तक अराउंड द चार्ज, जहाँ तक हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस स्पेस में, उतने एरिया में हम एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? अगर हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स व्हिच यू कैन डिराइव बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ है और किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। तो उसको हम कैसे पेपर पे आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, डिपिक्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए हम को एक बहुत आसान और सुविधाजनक तरीका है बाय डिस्क्राइबिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन्स। तो ये फील्ड लाइन्स होते क्या है? फील्ड लाइन्स हम स्केच करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और उनके डायरेक्शन को दिखाने के लिए। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें शो करते हैं कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम ये भी बता सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पॉइंट में क्या है। तो वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास कर रहे हैं, कहाँ से? यूनिट एरिया, और वो यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होना चाहिए। आपने एक फील्ड, एक चार्ज रखा, उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हुआ, तो उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है ये जानने के लिए आप एक एरिया ले लीजिए छोटा सा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो उस एरिए से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, दैट विल डिस्क्राइब द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कम नंबर में जा रहे हैं तो कम स्ट्रेंथ है, अगर ज़्यादा जा रहा है देन इट विल बी द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर। तो ये तो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से हमने फील्ड स्ट्रेंथ पता कर ली। और क्या डिनोट करता है ये? ये डिनोट करता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, सोर्स चार्ज जो रखा हुआ है वो पॉजिटिव है, देन द लाइन्स ऑफ फोर्स और द फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो चारों तरफ जाएंगे एंड इट विल एंड एट इन्फिनिटी। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज अगर सोर्स चार्ज है, देन फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड मूव रेडियली आउटवर्ड। अगर वो नेगेटिव चार्ज है, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है, देन फील्ड लाइन्स विल एंटर द चार्ज। फील्ड लाइन वहाँ पे एंटर करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड वेयर दे आर स्टार्टिंग, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। तो आपने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज में, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं इन्फिनिटी पे, पर इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज दे विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज और सोर्स चार्ज इट्सेल्फ। तो ये है फील्ड लाइन से हमने डायरेक्शन पता कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ये तो सिंगल चार्ज के लिए। अगर दो चार्ज है, सपोज दो सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास पास हमने रख दिया तो क्या होगा? ईच पॉजिटिव चार्ज के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो जब हम दोनों को पास पास लेकर आ रहे हैं, आप फिगर देख सकते हैं, आप अगर अभी आपके पास किताब लर्निंग मटेरियल है आपके पास, आप बुक टू में पेज नंबर 18 देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर आप पास लेकर आ रहे हैं तो दोनों के आसपास जो क्लोजर फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड थोड़ा बेंड हो जाएंगे और दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि इक्वल चार्ज और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो वहाँ पे जब आप दो पॉजिटिव चार्ज को पास लेकर आएंगे तो जो फील्ड लाइंस हैं दे विल बिकम ऑलमोस्ट रेडियल एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर है दोनों को पास लाने के बाद वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगे एंड दे विल रिपेल ईच अदर बेंडिंग आउटवर्ड, बेंड हो जाएंगे आउटवर्ड की तरफ और दोनों रिपेल करेंगे। अगर हमने हाँ यहाँ पे और एक बात सोचने वाली है, जहाँ पे हम दो पॉइंट चार्ज लेकर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर आ रहे हैं वो रिपेल करेंगे और ऐसा एक दोनों के बीच में एक स्पेस ऐसा है जहाँ पे कोई फील्ड लाइंस आपको नहीं मिलेगी, नॉट ए सिंगल फील्ड लाइन यू विल गेट बिटवीन मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उन दोनों के फील्ड लाइंस हैं दे विल कैंसल ईच अदर, ड्यू टू दिस देयर विल बी और द रिजल्टेंट फील्ड एट दैट पॉइंट इज ज़ीरो, हेंस द स्पेस बिटवीन मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस इज, वहाँ पे आपको कोई फील्ड लाइन नहीं मिलेगी। अगर हम दो ऑपोजिट चार्ज लेकर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से सारे फील्ड लाइंस शुरू होंगे और नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर बी में कि वो बैंड होके एक बाव की तरफ तरह बना रहे हैं फील्ड लाइंस। तो जितने फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगे उतना ही फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगे। तो ये है हमारे फील्ड लाइंस फॉर टू सिमिलर चार्जेस एंड टू डिसिमिलर चार्जेस। तो अभी तक जो हमने डिस्कस करा फील्ड लाइंस के बारे में, उसके जो पॉइंट्स हैं समरी ये है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करते हैं और टर्मिनेट होते हैं इन्फिनिटी में। नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस एंटर करते हैं नेगेटिव चार्ज में, दिस स्टार्ट एट इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। डाइपोल के लिए क्या होता है, डाइपोल मीन्स दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वहाँ पे फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने पहले जब शुरू में हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पता कर सकते हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो वो कैसे पता करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हम पता कर सकते हैं कैसे, द नंबर ऑफ लाइन फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ ऑन दिस सरफेस। किसी सरफेस में किसी पर्टिकुलर एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस एरिया में पास कर रहे हैं दैट विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इट्सेल्फ। देन टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार आता है जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि सो रीजन कि टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। वाई? क्योंकि अगर दो फील्ड है और दोनों फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं उधर सपोज आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। तो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे, आपको एक ही टेंजेंट मिलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दो फील्ड है, तो दो फील्ड का एक ही डायरेक्शन कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, वो एक लॉ होता है जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये गॉस लॉ है क्या? तो गॉस लॉ के स्टेटमेंट को जानने से पहले हम देखेंगे कि कैसे वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। पहले हम एक स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस है r, और वहाँ पे सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज रख लेते हैं। तो क्या होगा, ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड। तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे, उसके सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0Q/r2। तो हम कह सकते हैं KQ/r2। तो यहाँ पे भी क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल r है और हमने चार्ज रखा है प्लस q, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया KQ/r2। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता हो गया, उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो आउटवर्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले लीजिए, जो हमारा स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, वहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए डेल्टा एस सपोज। तो वो डेल्टा एस, यहाँ पे आप ये देखिए कि एरिया एलिमेंट जब हम ले रहे हैं, एरिया एलिमेंट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मली हम जैसे मैथ्स में आप निकालते हो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, उसमें हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बट यहाँ पे जब हम एक एरिया एलिमेंट कह रहे हैं तो वो उसका एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया होता है। किसी भी एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो यहाँ पे जब हम स्फेरिकल सरफेस की छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस और दैट एरिया एलिमेंट, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट? एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल है आपका 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एरिया एलिमेंट। तो अब हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा था E=KQ/r2। फ्लक्स, और एक हम टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा फाई, उसका सिंबल हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा फाई, which is defined as the scalar product of del S, that is the area element, and E, that is the electric field. So, E dot del S equal to del phi. और scalar product में आपको पता है A dot B, the scalar product of two vectors A and B, A dot B is equal to AB cos theta होता है, magnitude of A into magnitude of B into cos of और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा के जगह हम लिख सकते हैं ई डेल एस कॉस थीटा। तो हमने तो यहाँ पे ई डॉट डेल एस अभी रख लिया है, तो डेल फाई के लिए हम ई डॉट डेल एस कर रहे हैं, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ड्यू टू दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा पूरा स्फेरिकल सरफेस के लिए, टोटल फ्लक्स क्या होगा, दैट इज फाई व्हिच इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल फाई व्हिच इज इक्वल टू समेशन ओवर ई डॉट डेल्टा एस. तो समेशन ओवर डेल्टा एस जब हम ले रहे हैं, टोटल सारे एरिया एलिमेंट अगर टोटल स्फेरिकल सरफेस का हम ले लेंगे, देन इट विल बी द एरिया ऑफ द स्फीयर. सो एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr². तो हम यहाँ पे फाइ ई के जगह हम लिख सकते हैं फाइ इक्वल टू ई डॉट 4πr² और ई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था k³r², तो उस वैल्यू को भी हम पुट करेंगे. तो फाइ इक्वल टू k³r² इंटू 4πr² विच इज इक्वल टू 4πk इंटू क्यू और k का वैल्यू क्या है 1/4πε₀. सो आपका टोटल वैल्यू हो गया, अगर k की जगह पे हम 4πε₀ 1/4πε₀ डालेंगे तो 4π कैंसिल हो जाएंगे. तो टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स और टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू फाई व्हिच इज इक्वल टू q/ε₀. तो यहाँ पे आप अगर आपको q दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन साइड द सरफेस पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फ्लक्स व्हिच इज इक्वल टू q/ε₀. ε₀ आपको उसका वैल्यू कॉन्स्टेंट पता है तो यू कैन फाइंड आउट. तो ये जो सरफेस स्फेरिकल सरफेस हमने लिया था इसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस और ये जो लॉ हमें मिला इसको कहते हैं गॉस लॉ. तो अब हम इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं. गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. जो आपको फॉर्मूला मिला है उसी को ही स्टेटमेंट में लिखना है. फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फाई इज योर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इज टोटल चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट. उसको तो आपको डिफाइन करना ही नहीं है. तो आप कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज गॉस लॉ. तो ये गॉस लॉ एक बहुत ही वंडरफुल टूल है कि क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए. अब आपको कोई भी सरफेस दे दिया जाए, कोई भी प्लेन शीट या फिर सिलिंड्रिकल कोई सरफेस या फिर लाइन चार्ज, कोई वायर, किसी भी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ पॉइंट चार्ज ही नहीं, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ. तो आप हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. पहले तो हम अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, देन लाइन चार्ज के लिए, देन सरफेस चार्ज के लिए एंड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो पहले पॉइंट चार्ज के लिए बहुत सिंपल है. टोटल में गॉस लॉ को कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस की हमने बात की थी, वो गॉसियन सरफेस आपको लेना है जो एक रेगुलर सरफेस होता है, तो सिमेट्रिकल सरफेस, रेगुलर मीन्स सिमेट्रिकल सरफेस. तो अगर एक पॉइंट चार्ज आप ले रहे हैं तो जैसे हमने पहले केस अभी डिड्यूस किया था गॉस लॉ, स्फेरिकल सरफेस लिया था, वैसे ही उसके चारों तरफ एक गॉस सरफेस, गॉसियन सरफेस ले सकते हैं. और ये गॉसियन सरफेस आपको इमेजिन करना है, ये कोई ऐसा सरफेस बना हुआ नहीं होता है, आपको एक सिमेट्रिकल सरफेस जिसके भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ एक सिमेट्रिकल सरफेस को आप इमेजिन करेंगे एंड दैट विल बी योर गॉसियन सरफेस. तो वो पहले अगर आप पॉइंट चार्ज ले रहे हैं इसके लिए तो बहुत ही आसान है, उसके चारों तरफ आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, स्फेरिकल सरफेस ले लिया, दैट विल बी, और ये सबसे आसान तरीका है गॉसियन सरफेस इमेजिन करने का, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी. तो गॉसियन सरफेस ले लिया, अब आप उसमें एक एरिया एलिमेंट ले लीजिए डेल्टा एस और आपका पॉइंट चार्ज तो दिया हुआ है प्लस क्यू, तो जो आपका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपका डेफिनेशन था फाई ई जो फ्लक्स का कि फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, तो अब हम ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को इक्वलाइज करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा, क्योंकि अगर बाकी तीन पता है आपको, यहाँ पे चार क्वांटिटी है, चार वेरिएबल ई डेल्टा एस क्यू एंड एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो वेरिएबल है ही नहीं, वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, क्यू आपको पता है, डेल्टा एस पता है अगर, तो आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू आपको गिवन है, क्यू है पॉइंट चार्ज, उसमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं है। अब हम देखेंगे कि डेल्टा एस एक है जो हमें कैलकुलेट करना है, या फिर टोटल एरिया, डेल्टा एस तो हम ले रहे हैं लेकिन हमें चाहिए ई डॉट एस इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो एस क्या है, दैट इज़ द सरफेस एरिया क्या है उस गॉसियन सरफेस का। तो जैसे आपको पता है कि हाँ, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो ई डॉट एस है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स आपको एंगल का भी ध्यान रखना होगा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द एरिया एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, एंड एरिया एलिमेंट आप कहीं भी स्फेरिकल सरफेस पे ले रहे हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, हैंस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट विल बी 0 degree, हैंस ई डॉट एस इक्वल टू ई इंटू एस, बिकॉज कॉस 0 degree इक्वल टू 1। तो बस आपको एस टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या है ये पता करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ आपने अप्लाई करा तो ई इक्वल टू क्यू बाय 4πε₀r². तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अप्लाइंग गॉस लॉ हमने ये डिराइव किया। तो यहाँ पे अगर आप किसी इस पॉइंट चार्ज के पास किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं क्यू नॉट, देन व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, दैट मीन्स क्यू नॉट इंटू ई, और ई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे क्यू बाय 4πε₀r², तो क्यू नॉट इंटू क्यू बाय 4π क्यू डिवाइडेड बाय 4πε₀r², तो ये हो गया आपका फोर्स इक्वल टू क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4πε₀r². तो ये किसका एक्सप्रेशन है अगर आपको याद है, तो ये है कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन विच इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आप प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही है। ये तो हमने पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा, आगे हम देखेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने पहले एप्लीकेशन देख ली फॉर पॉइंट चार्ज, अब हम देखेंगे लाइन चार्ज के लिए, फिर सरफेस चार्ज। तो हमारा जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, आप हमेशा एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे अराउंड दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपने एक स्फीयर ले लिया, सिलेंडर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। पर जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख रहे हैं, उसके चारों तरफ हम एक स्फीयर लेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लेंगे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम जब ले रहे हैं वहाँ पे क्या हम सिमेट्रिकल कह रहे हैं, दैट मीन्स दैट सरफेस एरिया, यहाँ पे जब सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं तो वो सिलेंडर जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसका सरफेस जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दैट वायर उसको हम उसके एक्सिस इमेजिन करेंगे, उसको गॉसियन सरफेस का एक्सिस बना के हम वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सपोज हम एक थीन चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे, और उस सपोज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज इज सिग्मा एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा एल इंटू द लेंथ ऑफ द वायर। तो आपका यहाँ पे सपोज द लेंथ ऑफ वायर इज एल एंड द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एल, तो आपका लीनियर और चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू एल, दैट इज सिग्मा एल एल। तो ये तो आपको चार्ज मिल गया। तो किसी भी ये जो चार्ज डेंसिटी आपने लिया है और ये लाइन चार्ज लिया है, सपोज चार्ज क्यू उसके ऊपर, प्लस क्यू चार्ज है उस वायर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पी पे, और वो सपोज दैट पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर और फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि वायर के ऊपर ही आपका चार्ज है। तो आपको डिस्टेंस पता है और आपको चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया ऑफ रेडियस आर, क्योंकि आपको आर डिस्टेंस में वो पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, तो उसका रेडियस भी आप आर लेंगे, क्योंकि सरफेस पे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और उस वायर को हम इमेजिन करेंगे इट इज़ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, फिर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, डेल्टा एस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे, ई डॉट डेल एस तो एंगल बिटवीन ई एंड एस हमें हमेशा देखना होता है। तो जब हम सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, वहाँ पे आपके दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर और दूसरा दोनों एंड पे जो सर्कुलर सरफेस है। तो जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे पहले देखते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट दैट इज रेडियली आउटवर्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द लाइन चार्ज। आप अपनी किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 21 पे फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ई और डेल्टा एस का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम इज 0 degree। तो हम कर्व्ड सरफेस के लिए सिर्फ निकालेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो दो सर्कुलर सरफेस है उसके लिए क्या है, वहाँ पे अगर आप डेल्टा एस ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर सरफेस होगा एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल इज 90 degree। दैट मीन्स अगर कॉस 90 degree आप जब ई डॉट डेल्टा एस लेंगे तो ई डेल एस कॉस थीटा कॉस 90 degree, कॉस 90 degree इक्वल टू 0, दैट मीन्स ई डॉट डेल एस इक्वल टू 0। तो वो दोनों कॉम्पोनेंट जो दो सर्कुलर सर्फिस दो एंड पे है उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है दोनों सर्फेस के लिए, दोनों सर्कुलर सर्फेस। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस के लिए आपका ई इंटू एस हो गया, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ ए ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू एल। तो ई इंटू 2πr एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू सिग्मा एल इंटू एल है आपका। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को इक्वलाइज अगर कर रहे हैं, ई इंटू 2πr एल इक्वल टू सिग्मा एल इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू आपका एल एल कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एल डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से आप जहाँ पे चार्ज लोकेटेड है वहाँ से वो डिस्टेंस के साथ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इन्वर्सली। तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस लेते जाएंगे, अगर बहुत ही डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज ग्रेजुअली। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई वर्सेस आर, तो आपको मिलेगा एक कर्व जो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होता है। आप वो ग्राफ भी देख सकते हैं पेज नंबर 22 पे। तो ये था आपका लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। अब हम देख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल के लिए आपका आपने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज एक स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर, एंड द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ओनली, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल और दैट हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पे सपोज उसका रेडियस है आर एंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर और दैट हॉलो स्फेरिकल स्फीयर विच इज ए स्फेरिकल सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, टोटल चार्ज इज क्यू, रेडियस इज आर। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, तो सिमेट्रिकल सरफेस है, इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक सिमेट्रिकल सरफेस है। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट एंड फील्ड एट द इंटरनल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सटर्नल पॉइंट जब हम कैलकुलेट करें इट विल बी आउटसाइड दैट स्फीयर, तो उस पॉइंट को हम किसी गॉसियन सरफेस के ऊपर रखेंगे तब जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। सपोज द पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर डिस्टेंस और आर स्मॉल आर को रेडियस बना के एक इमेजिनरी स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे अराउंड द स्फेरिकल सेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस पॉइंट पे अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे सिमिलर जैसे पहले कर रहे थे ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू और ई डॉट एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो डेल्टा एस एंड ई के बीच में डायरेक्शन फिर से वही 0 degree। सो हम ई इंटू एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लेंगे क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का 4πr², तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो E इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 r². तो यहाँ पे देखना है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1πr². लाइन चार्ज के केस में हो रहा था E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1πr, पर यहाँ पे 1πr², तो यहाँ पे भी डिक्रीज होगा बट इट विल डिक्रीज एट ए फास्टर रेट। तो ये तो हमारा था एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अब इंटरनल पॉइंट के लिए क्या होगा? इंटरनल पॉइंट मतलब होलोस्फीयर के अंदर हम ले रहे हैं, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं ई एस, क्योंकि ई और एस के बीच एंगल 0 degree है, कॉस 0 degree 1, तो वही सेम ई डॉट 4πr और ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये होलोस्फीयर है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टोटली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इनसाइड इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम सरफेस पे ले रहे हैं, जो आपका होलोस्फीयर है उसका उसके सरफेस पे अगर आप ले रहे हैं, तो स्मॉल आर के जगह पे आप कैपिटल आर पुट करेंगे और इंटरनल पॉइंट पे आपका 0 होता है। अगर हम होलोस्फीयर नहीं लेके एक सॉलिड स्फीयर लेंगे तब भी रिजल्ट वही आएंगे क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस. सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में वो पूरा चार्ज आपका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो आपका हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. अब हम लेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो इसके लिए सपोज आपको एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्योंकि ये शीट है तो दोनों साइड पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेगा, कंडक्टिंग शीट है. तो सपोज दिस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. हमने लाइन चार्ज जब एक वायर लिया था वहाँ पे भी हमने कहा था कि चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एल. तो वो सरफेस चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था. यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे हम चार्ज कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा सिग्मा एल इंटू लेंथ ऑफ द वायर कर रहे थे क्योंकि वो लाइन चार्ज डेंसिटी था. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो यहाँ पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू एरिया करेंगे क्योंकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट, यहाँ से आपको चार्ज मिल गया, आपको सरफेस कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है. पहले ई डॉट डेल्टा एस देखेंगे, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस. और डेल्टा एस के लिए पहले हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा. तो क्योंकि ये एक प्लेन शीट है और आपको किसी पॉइंट पी पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट पी शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ ए गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे आप कौन सा सरफेस लेंगे जो सिमेट्रिकल होगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हम लेंगे एक सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सरफेस, जिसके जो सर्कुलर सरफेस है वहाँ पे वो पॉइंट पी लाया करेगा, एंड द सिलेंडर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट. प्लेन शीट के साथ परपेंडिकुलर है एंड इस एक्सिस इज पैरेलल टू द फील्ड. जो सिलेंडर ले रहे हैं उसके साथ, उसके एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पेज नंबर 24 पे आपका प्लेन शीट है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. तो जो हम सर्कुलर सरफेस ले रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कुलर सरफेस पे आपका पी है. तो सेम पी पॉइंट आपके शीट से जितने डिस्टेंस पे है, पी प्राइम एक और पॉइंट सरफेस से दूसरे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही दूरी पे हमने लिया. अब देखेंगे कि डेल्टा एस, अगर स्मॉल सरफेस एरिया इस सर्कुलर सरफेस पे हम ले रहे हैं, सर्कुलर सरफेस का स्मॉल सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर सरफेस, एंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर सरफेस, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया एलिमेंट विल बी 0 degree. वहाँ पे आप सिर्फ ई डॉट एस करेंगे तो आपको ई इंटू एस मिलेगा क्योंकि cos 0 degree इक्वल टू 1. जब हम कर्व्ड सरफेस ले रहे हैं वो भी हम ले सकते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं ई डॉट डेल एस क्या होता है. यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एस कर्व्ड सरफेस के लिए, जो डेल्टा एस ले रहे हैं उसका डायरेक्शन और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में एंगल है 90 degree, तो वहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि आपका ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो हम सिर्फ दो कर्व सरफेस के लिए, दो सर्कुलर सरफेस के लिए लेंगे. तो दो सर्कुलर सरफेस के लिए ई डॉट डेल्टा एस इंटू प्लस ई डॉट डेल्टा एस व्हिच इज इक्वल टू 2e डेल्टा एस क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1. तो हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2e डेल एस और 2e इंटू एस, अगर टोटल सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, टोटल सर्कुलर सरफेस एरिया. तो दैट इज इक्वल टू e इंटू एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इक्वल टू यहाँ पे है आपका सिग्मा इंटू सरफेस एरिया. तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एस ले रहे हैं तो दोनों साइड में डेल्टा एस, तो 2e इंटू डेल्टा एस इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, तो टू ई डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, वेर ई इक्वल टू अगर आप कैलकुलेट करेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम लाइन चार्ज में देख रहे थे, जैसे हम सरफेस स्पीयर के केस में देखा था कि लाइन चार्ज के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, स्पेयर के केस में हमने देखा था E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, पर यहाँ पे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आर दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए हॉलो फॉर ए स्फेरिकल सेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट एट एन इंटरनल पॉइंट, ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए प्लेन शीट। तीनों के लाइन डिस्ट्रीब्यूशन तीन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो आपके नॉर्मली अगर जो भी 6 मार्क्स क्वेश्चंस इस मॉड्यूल से आते हैं, अगर इस चैप्टर से आते हैं, तो गॉस लॉ के ऊपर आ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, इसमें से ऑलमोस्ट आपको सवाल मिल ही जाते हैं। और अगर आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे, इसका एप्लीकेशन हमेशा से होता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो आज तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो आज का चैप्टर था, लेकिन अगले महीने आपका पब्लिक एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं कुछ टिप्स जल्दी जल्दी बताना चाहूँगी। आपके सवाल आते हैं ऑलमोस्ट 3 टाइप के, एक तो नॉलेज बेस्ड होती है, एक आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और एक न्यूमेरिकल होते हैं। जो नॉलेज बेस्ड होते हैं उसमें आपके इंक्लूड होते हैं डेफिनेशंस, लॉज, स्टेटमेंट, ऐसे ही, तो उसको तो आपको रिमेंबर करना है, लॉज को डेफिनेशन को रिमेंबर करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको किताब को थोरोली पढ़ना होता है, और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए एग्ज़ाम में जल्दी सी, उसके लिए आपको जो 5 ईयर्स के पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें से आप अगर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90% आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अटेंड कर लेंगे। तीसरा आता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद करने हैं और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने हैं। जब भी आप एक न्यूमेरिकल के लिए जा रहे हैं, पहले आप ये सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर देख लीजिए कौन कौन से डाटा गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है, तो वो सारे क्वांटिटी को लेके कौन सा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं पे एक सिंगल फॉर्मूले से आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, कहीं कहीं पे 2 फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपने सारा डाटा लिख लिया, ये बात ज़रूर एंश्योर कर लीजिए कि सारे जो डाटा गिवन है वो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप कर लीजिए। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, जिससे अगर आपका पूरा भी सही है, फॉर्मूला सही पुट करा है, पर फिर भी मार्क्स आपके कट जाते हैं, लेकिन तो ये बात का ध्यान रखिए। और जब आपने कैलकुलेट कर लिया, अगर बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन जैसे पॉइंट्स में होता है, तो हमेशा आपको उसको 3-4 पॉइंट्स तक आप कैलकुलेट नहीं करना है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक आप कैलकुलेट करें। और यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए। यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो इतना मेहनत करने के बाद भी आपके मार्क्स कट जाते हैं यूनिट्स के। तो ये है न्यूमेरिकल्स के लिए। सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम के लिए घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए और आप प्लान आउट कर लीजिए। अगर और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप फाइव ईयर्स के, पिछले फाइव ईयर्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, तो प्रैक्टिस कर लेने से आपको जो एग्ज़ाम में घबराहट होती है वो नहीं होगा। दूसरी बात, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको ग्राफ्स और सर्किट डायग्राम भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स में आपको मिल ही जाएंगे। और जो भी आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो सिंबल्स हैं या फिर डायरेक्शन है सर्किट डायग्राम, तो करंट का डायरेक्शन आप ज़रूर शो करिए एरो दे के। जब कोई डेरिवेशन कर रहे हैं पहले आप जो जो सिंबल्स नोटेशन यूज़ कर रहे हैं उसको डिफाइन कर दीजिए ऊपर, उसके बाद आप डेरिवेशन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा या पेज भरना नहीं होता है, आपको जितना पूछा गया है उसका शॉर्टकट और डायरेक्ट जवाब लिखना है आपको, चाहे वो जितना छोटा हो या जितना लंबा हो, तो उससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे की तरह लैंग्वेजेस में आप जैसे लिखते हैं लंबा नहीं करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। और सवाल पढ़ते हुए आप ये ध्यान रख लीजिए कि क्या पूछा गया है, कहीं आपको डेफिनेशन लिखना है या उसको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ डेफिनेशन लेके छोड़ देना है या डेफिनेशन दे के एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन करना है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सही तरीके से कर पाएंगे, घबराहट नहीं होगी और मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपको सब कुछ पता होता है लेकिन जब भी हम पेपर आप देखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप कोई भी ले लीजिए टाइम बाउंड आप कर लीजिए, फिर देखिए आपके सिली मिस्टेक्स कितने ज़्यादा होते हैं, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस में ही आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थे आपके एग्ज़ाम के टिप्स। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, सारे फॉर्मूले याद करने की बहुत ज़रूरत है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लॉ एंड डेफिनेशंस आपका। हाँ, और एक चीज़ है, आपको कभी कभी एक सवाल आता है कि डिफाइन वन न्यूटन और डिफाइन वन जूल, उसके लिए आपको कोई डेफिनेशन आपकी किताब में हो सकता है नहीं हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसका कोई ऐसे रोक टोक डेफिनेशन आप बना भी सकते हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड होती है। तो एप्लीकेशन बेस पे अगर आपको कोई से यूनिट का डेफिनेशन लिखना है तो उसका फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, तो वन न्यूटन का आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, मास और एक्सेलरेशन के यूनिट को लेके आप उसका डेफिनेशन खुद से बना के लिख सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें जो एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, और कोई भी क्वेरी है आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम।